नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिनेश कुमार सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण 2024 के पहले चरण का वीरता पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उपस्थित थे। इधर भारत ने वर्ष 2023-24 में रक्षा उत्पादन के मूल्य में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। 2023-24 में रक्षा उत्पादन का मूल्य लगभग 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष के उत्पादन मूल्य से 16.8% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्ष 2023-24 में रक्षा उत्पादन के मूल्य में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि हासिल करने के लिए देश की सराहना की है। राज्यभर में आपातानी जनजाति का प्रमुख कृषि आधारित त्यौहार ड्री परम्परा उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेश के लोगों को ड्री की शुभकामनाएं दी हैं। उधर ने राज्य में सुख शांति और खुशहाली की कामना की है। राजधानी ईटानगर के पप्नाला में स्थित ड्री ग्राउंड में आयोजित गोल्डन जुबली ड्री फेस्टिवल समारोह में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, विधानसभा उपाध्यक्ष कार्दो निग्योर, विधायक हागे अप्पा, ईटानगर के मेयर तामे पासांग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनजातीय विरासत के संरक्षण पर जोर देते हुए युवा पीढ़ी को अपनी कला और संस्कृति के बारे में जागरूक करने और प्रचार प्रसार के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। इस खास मौके पर राजधानी क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों की टोलियों द्वारा पेश लोक नृत्य आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में आयोजित ड्री फेस्टिवल समारोह में राज्य के कृषि मंत्री गैब्रियल डिवांगसू, पूर्व मंत्री तागे ताकी, विधायक तोको तातुंग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में कृषि मंत्री ने लोगों से त्योहारों में शामिल होने और जनजातीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऑर्गेनिक कल्टीवेशन को बढ़ावा दे रही है। कृषि मंत्री ने लोगों से कृषि, बागवानी और पशुपालन क्षेत्र का लाभ उठाकर राज्य को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान की अपील की। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में ड्री पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिले में निवास करने वाली आपतानी जनजाति के लोगों ने अपनी कला और संस्कृति को प्रदर्शित किया। ड्री फेस्टिवल कमेटी रोइंग के चेयरमैन हिबू दोले ने बताया कि ड्री उत्सव समारोह के तहत युवाओं की सहभागिता के लिए हर साल विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार के फाइनेंस प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 के राज्य बजट के संबंध में प्रदेश के लोगों से सुझाव आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि राज्य बजट में जनता की आकांक्षाओं और जरूरतों को शामिल करने के लिए सरकार पारदर्शिता के साथ लोगों के सुझावों पर अमल करेगी। उन्होंने लोगों से अपने सुझाव www.arunachalbudget.in पर 11 जुलाई तक भेजने की अपील की है। टॉप 3 सुझाव देने वाले प्रतिभागियों को 50,000 रूपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। कैपिटल ईटानगर पुलिस और ललन कोचिंग सेंटर ने पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए नीट प्रतियोगिता की तैयारी के लिए प्रोजेक्ट सक्षम लॉन्च किया है। राजधानी पुलिस की पहल नीट 2025 परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए काफी सहायक होगी। इसके तहत 10 महीने का कोचिंग प्रोग्राम जिसमें अकादमिक ट्रेनिंग और काउंसलिंग शामिल है। अरुणाचल प्रदेश में कार्यरत पुलिस कर्मियों के चयन नित 7 बच्चों को स्कॉलरशिप मुहैया कराई जा रही है, जिसमें से 5 छात्रों की पूरी फीस माफ होगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ईटानगर में आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में चयनित छात्र को SP रोहित राजवीर सिंह और ललन कोचिंग सेंटर की प्रतिनिधियों ने प्रोत्साहित किया। पापुमपारे जिले के यूपिया में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर समन्वय बैठक हुई। इस बैठक में दोईमुख से विधायक नवम विवेक और सागाली से विधायक रातू तेची मौजूद थे। शिक्षकों के रेशनल पोस्टिंग पर जोर देते हुए विधायक नवम विवेक ने शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने सभी शिक्षकों से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने और प्रगति की समीक्षा के लिए 6 महीने में एक समीक्षा बैठक करने का भी आग्रह किया। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण ईटानगर के 6 किलो लेखी गंगा से बटगांव और करसिंता मार्ग पर यातायात प्रभावित है। जिला उपायुक्त ने राजमार्ग विभाग को अपने कर्मियों और उपकरणों को 24/7 तैयार रखने और किसी भी अवरोध को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिला उपायुक्त ने एक आदेश जारी कर ईटानगर बंदरदेवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर करसिंता से होकर यातायात पर रोक लगाते हुए अगली सूचना तक गुमतो रोड से वाहनों को आने जाने की सलाह दी है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, द न्यूज रेड बाय हागे एनी। The 22nd India-Russia Annual Summit will focus on defense, trade linkages, investment ties, energy cooperation, education, science and technology, culture and people-to-people connections as the key discussion points. This was stated by Foreign Secretary Vinay Mohan Quatra during a press briefing in New Delhi today. On the Prime Minister's upcoming official visit to Russia and Austria from 8th to 10th of this month, Mr. Quatra said, Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin will review the entire range of multifaceted relations between the two countries. He said they will exchange views on contemporary regional and global issues of mutual interest. India has registered the highest ever growth in the value of defense production in 2023-24. The value of production has reached nearly 1,27,000 crore rupees in 2023-24, which is 16.8% higher than the value of production of the previous financial year. Prime Minister Narendra Modi has lauded the country for achieving the highest ever growth in the value of defense production in 2023 and 24. Union Minister Ashwini Vaishnaw today said that Indian Railways is manufacturing 2,500 general coaches this year, and this will follow the manufacturing of 10,000 more general coaches. Speaking on the occasion of a MOU signing between Gati Shakti Vishwavidyalaya of Indian Railways and leading commercial aircraft manufacturer Airbus, Mr. Vaishnaw said that the government's prime focus has been to cater to the economically weaker section and middle class. Deputy Chief Minister Chonamin today inaugurated the Apatani Heritage Souvenir Shopping Complex and the Golden Jubilee Dri Heritage Gate at Dri Ground Papunala on the occasion of Dri Festival. The newly inaugurated complex provides a platform for local artisans to showcase their unique crafts and traditional artifacts, promoting sustainable livelihoods and cultural exchange. Further, the Golden Jubilee Dri Heritage Gate symbolizes the vibrant traditions and history of the Apatanis, celebrating 50 years of the Dri Festival's legacy. State Governor, retired Lieutenant General K.T. Parnaik, has extended his good wishes and festival greetings to the people of the state in general and to Apatani community in particular on the auspicious occasion of Dri. He expressed his hope that the warmth and splendor, which have always been an important part of the festivity, will usher in happiness and prosperity for all. Chief Minister Pema Khandu yesterday announced that the state government is preparing a roadmap called Mission Olympic 2028 and Mission Olympic 2032 under its ambitious 100-day action plan. Inaugurating a FIFA-standard artificial turf football ground at Galwa Sangyang Gyatso High Altitude Stadium, he said that the aim is to send as many athletes as possible from the state to the Olympics representing the country. Khandu also revealed that a new youth policy is also under preparation to tap and hone the talents of the youth in various fields. The State Department of Finance, Planning and Investment has invited valuable suggestions from the citizens of the state for the upcoming Arunachal State Budget 2024-25. The citizens can submit their suggestions at the Arunachal Budget Portal by 11th of this month. Further, the top three suggestions will receive ₹50,000 each. The India Met Department has issued a red alert for very heavy rainfall in Uttarakhand and most parts of northeast India for today and tomorrow. The weather department said that a cyclonic circulation lies over northeast Rajasthan and a trough runs from northeast Rajasthan to Bangladesh. DC Capital Complex Shweta Nagarkoti today issued a traffic advisory order to close down the road from Nirjuli to Bandarwa till the clearance of the blockade at the Karsingsa. All vehicular movement from Nirjuli to Bandarwa shall be diverted via Gumto Road. The DC also directed SP Capital and SP Traffic to depute police personnel for the diversion. She further directed Executive Engineer PWD Nahalagan Highway Division Nirjuli to display banners and barricades at the entry point of the roads. NEET PG Entrance Examination 2024 will be held on 11th of next month and to be conducted in two shifts. The National Board of Examinations in Medical Sciences has issued the revised schedule of the examination today. Project Saksham, an initiative to support the meritorious children of police personnel to qualify for the NEET 2025 examination, was jointly launched today by the Capital Police and Lalan's Coaching Centre, Itanagar, at the Conference Hall of the SP Itanagar. That's all in this news bulletin. Namaskar.